तारीख 5 जून दिन शुक्रवार, दिन भर के साथ मैं संदीप सोनी। मैगी नूडल्स पर पूरे भारत में लगा प्रतिबंध, नेस्ले ने मैगी को सुरक्षित बताया। जनरल सिंह भिंडरावाला के पोस्टर हटाने के विवाद पर जम्मू में सिखों ने आज भी किया प्रदर्शन। विवेचना में आज याद करेंगे 26 साल पहले बीजिंग में तियानानमेन चौक पर हुए हत्याकांड को।
जब ये मार पड़ी तो एक बड़ा हजूम, करीब 2-3 हजार लोगों का होगा, वो हमारे होटल में लपका चला आया और हल्ला मचा कि बंद करो दरवाजे, और 2-3 लोगों को चोटें भी लगी थी, एक दूसरे को सहारा दिया था, बदहवासी की हालत में थे।
होंगी खेल की भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, प्रगति सक्सेना से। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने नेस्ले को देश भर में मैगी के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी YS मलिक ने एक आदेश जारी करके कहा है कि मैगी के 9 स्वीकृत वेरिएंट बेहद खतरनाक हैं। सिंगापुर ने भी भारत से आयातित नूडल्स की बिक्री पर रोक लगा दी है। नेस्ले ने पहले कहा था कि उनके सारे उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित हैं और वो उसे एहतियातन बाजार से हटा रही है। भारत में मैगी नूडल्स की सबसे ज्यादा बिकने वाली ब्रांड रही है। पाकिस्तान की पुलिस ने यह माना है कि बच्चों के अधिकारों की कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई की हत्या करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार 10 लोगों में से 8 लोगों को छोड़ दिया गया था। स्वात घाटी के पुलिस प्रमुख आजाद खान ने कहा कि 8 लोगों को सबूतों की कमी की वजह से अप्रैल में छोड़ दिया गया, लेकिन उस वक्त पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा था कि सभी 10 आरोपियों को आजीवन कैद की सजा दी गई है। इस मुकदमे को जितना गोपनीय रखा गया उससे इसकी वैधता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 3 साल पहले पाकिस्तानी तालिबान ने मलाला की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की थी। अमरीकी अधिकारियों का कहना है कि हैकरों ने 40 लाख सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी चुरा ली है। अमरीकी अधिकारियों को शक है कि ये हैकिंग चीन से की गई। एक पूर्व FBI एजेंट ने BBC को बताया कि अब इन हैकर्स को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। उधर चीन ने कहा है कि इसके लिए अमरीका का चीनी हैकर्स को जिम्मेदार ठहराना गैर जिम्मेदाराना बर्ताव है। FBI के पूर्व साइबर एजेंट EJ हिल्बर्ट के मुताबिक जिस कंप्यूटर सिस्टम को निशाना बनाया गया उसे अपडेट नहीं किया गया था।
According to the various reports that I've read, the system impact.
जो खबरें और रिपोर्ट मैंने पढ़ी हैं उनके हिसाब से जिस सिस्टम को निशाना बनाया गया उसे हाल में दुरुस्त नहीं किया गया था। इसलिए एक बार जब हैकर्स ने ये पता लगा लिया कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है और उस पर क्या चल रहा है, तो उसे भेदना अपेक्षाकृत आसान रहा होगा। ये थे EJ हिल्बर्ट के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। रोमानिया के अभियोक्ताओं ने प्रधानमंत्री विक्टर पोंटा के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री पोंटा पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। रोमानिया के राष्ट्रपति क्लाउस योहानिस ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की है, जबकि प्रधानमंत्री का कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और वे इस्तीफा नहीं देंगे। प्रधानमंत्री ने एंटी करप्शन एजेंसी के मुख्यालय से निकलते हुए पत्रकारों को बताया कि उन पर धोखाधड़ी, पैसे की हेराफेरी और टैक्स चोरी के आरोपों की जाँच चल रही है। यंगसी नदी में डूबे चीनी जहाज में मृतक एक महिला की बहन ने आज सरकार के एक संवाददाता सम्मेलन में जबरन दाखिल होकर इस हादसे की जांच की मांग की है। ये जहाज एक तूफान के कारण पलट गया था, लेकिन शिया युनचेन ने अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वे गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्घटनास्थल पर फूल लेकर पहुंचने की कोशिश करते हुए मृतकों के रिश्तेदारों को BBC संवाददाता ने चीनी सुरक्षा बलों से बहस करते हुए भी देखा। BBC समाचार।
ये BBC हिंदी है और आप सुन रहे हैं दिन भर। रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव। बीते कुछ दिनों से मैगी और विवाद ऐसे हो गए हैं जैसे चोली दामन का साथ। आज भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने नेस्ले को देश भर में मैगी के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा है कि मैगी के जो 9 प्रकार के नूडल्स आते हैं वो बेहद खतरनाक हैं। हालांकि मैगी बनाने वाली स्विस कंपनी नेस्ले अभी भी दावा कर रही है कि उसके नूडल्स जो हैं वो एकदम सुरक्षित हैं। शालू यादव की रिपोर्ट।
ये तो कहना गलत नहीं होगा कि भारत में दाल, रोटी और चावल के बाद अगर किसी चीज को प्रमुख भोजन कहा जा सकता है तो वो मैगी है। लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक मैगी मानो हर नुक्कड़ पर उपलब्ध थी। लेकिन भारत में पिछले दिनों हुई लैब टेस्टिंग में मैगी के कई सैंपल फेल हुए थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड और दिल्ली जैसे राज्यों ने मैगी पर प्रतिबंध लगा दिया था। मैगी में MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट और लेड की मात्रा स्वीकृत स्तर से अधिक पाए जाने के बाद इस पर विवाद हुआ था और फिर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने नेस्ले पर आरोप लगाया कि कंपनी ने भारतीय खाद्य सुरक्षा कानून का उल्लंघन किया है। प्राधिकरण का कहना है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं कि ये नूडल्स मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं। नियामकों द्वारा मैगी के कुछ पैकेटों में लेड की मात्रा ज्यादा पाए जाने के बाद नेस्ले ने मैगी ब्रांड को भारतीय स्टोर से हटा लिया है। नेस्ले के ग्लोबल CEO पॉल बुल्के की अगुवाई में कंपनी के उच्च अधिकारियों ने गुरुवार को प्राधिकरण से मुलाकात की। हालांकि उन्होंने शुक्रवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि मैगी पूरी तरह से सुरक्षित है और लोगों के बीच बनी भ्रम की स्थिति के कारण इसे बाजार से हटा दिया गया है। पॉल बुल्के का कहना था,
We have been in India for more than 100 years. We are part of India. And with the government, we are talking to the authorities.
हमें भारत में 100 साल से ज्यादा हो गए हैं। लोगों के बीच बनी भ्रम की स्थिति की वजह से हमने फैसला किया है कि हम मैगी को भारतीय बाजार में फिलहाल नहीं बेचेंगे, बावजूद इसके कि हमारा प्रोडक्ट एकदम सुरक्षित है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम जल्द ही भारतीय बाजार में वापस आएंगे। इस विवाद के बाद हमारे बाजार में शेयर जरूर गिर गए होंगे, लेकिन हमारे लिए उपभोक्ताओं का भरोसा ज्यादा महत्व रखता है। हमारी सरकार और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ बातचीत जारी है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने नेस्ले को एक कारण बताओ नोटिस भी भेजा है, जिसमें कहा गया है कि प्राधिकरण द्वारा मैगी के 9 वेरिएंट्स के लिए दी गई मंजूरी को क्यों ना वापस लिया जाए। शालू यादव, BBC, दिल्ली।
मैगी नूडल्स को लेकर जब से ये विवाद शुरू हुआ है, तब से लेड यानी सीसा, इसका जिक्र बार बार आ रहा है। हमारे आपके शरीर में इसकी आवश्यकता से अधिक मात्रा हो जाए तो इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, यही जानने के लिए मैंने कुछ देर पहले बात की दिल्ली की एक डॉक्टर अनुपम आर एरन से।
कोई लेडी प्रेग्नेंट है और बच्चा उसकी भ्रूण में है तो उसमें उसके डेवलपमेंट से ही अफेक्ट आना शुरू हो जाता है। उसमें ये हो सकता है कि डिलीवरी समय से पहले हो जाए, तो लो बर्थ वेट बेबी मतलब जो बच्चा पैदा हो उसका ग्रोथ पूरा ना हुआ हो और उसका वजन जितना नॉर्मल रेंज होता है उससे कम हो। बच्चों के शरीर में एक बात और होती है कि उसमें लेड का एब्जॉर्प्शन रेट ना ज्यादा होता है बड़ों के कंपेरिजन में, तो इस वजह से ऐसा भी हो सकता है कि उनके ऊपर इफेक्ट ज्यादा है। तो क्योंकि बच्चों में ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा था उसके ऊपर बड़ा क्रूशियल रोल है इसका, कि उसको बहुत नुकसान पहुंचाता है, किडनी को डैमेज करता है, बॉडी के हर ऑर्गन पे कुछ ना कुछ इसका असर है, ब्लड पे भी इसका इफेक्ट है। अगर लंबा एक्सपोजर है तो एक तरह का एनीमिया हो जाता है, वो जल्दी से करेक्ट नहीं होता, मतलब खून की कमी हो जाती है जो जल्दी से ठीक नहीं होती। बच्चे में ग्रोथ स्लो होगी और जल्दी थकान कहेगा, चिड़चिड़ा हो सकता है।
डॉक्टर अनुपम जो बता रहे थे सीसा के कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। और बिहार के मधेपुरा से दबंग सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, वो आज हमारे स्टूडियो आए थे। BBC से ख़ास बातचीत में पप्पू यादव ने कहा,
ये भी आपके इलाके में आम फहम बात है कि अगर पप्पू यादव कह दें, आवाज़ कर दें तो 1000 राइफल निकल आएंगी।
बस मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि राइफल मुझे एक बात बताइएगा ना, कभी किसी ने पप्पू यादव को राइफल लेके चलते या राइफल के साथ चलते देखा क्या? कोई बताइएगा ना, एक फोटो देंगे ना आप?
पप्पू यादव से राजेश जोशी की ये पूरी बातचीत हम आपको अगले कार्यक्रम घटना चक्र में रात 9:30 सुनवाएंगे। बहरहाल अभी रुख कर रहे हैं जम्मू का, जहां सिख युवकों ने निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन जनरल सिंह भिंडरावाले के पोस्टर हटाने के कारण किया जा रहा था। रविंद्र सिंह रॉबिन की रिपोर्ट।
सिख प्रोटेस्टर्स और जम्मू पुलिस के दरमियान हुए टकराव में कल एक सिख नौजवान की मौत हो गई और 2 दर्जन के करीब लोग जख्मी हो गए हैं। टकराव का कारण बना है एक समागम का पोस्टर, जिसको कथित तौर पर पुलिस द्वारा उतारे जाने के बाद वहां के सिख समुदाय के लोग पुलिस के खिलाफ सड़कों पर आ गए। पोस्टर पर 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान मारे गए सिख मिलिटेंट्स की याद को मनाने के प्रोग्राम के अलावा संजनैल सिंह भिंडरांवाला की तस्वीर भी लगी थी। जम्मू की सिख जत्थेबंदियों का कहना है कि पोस्टर पुलिस ने उतारा है। उनका कहना है कि वे पिछले 31 वर्षों से इस यादगार समागम को करते आ रहे हैं और इसी तरह के पोस्टर लगाते रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने जो इस पोस्टर को उतारा है तो उससे वो आहत हुए हैं। इस बारे जब वहाँ के जम्मू के सिख लीडर अवतार सिंह से बात की तो उनका कहना था,
बात ऐसे है कि 1984 जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उनके जो शहीद हैं हमारे जम्मू में सिंबल कैंप एक जगह है, यहाँ हम हर साल ये प्रोग्राम बनाते हैं। पूरी सिख संगत अब जम्मू हर साल हमारे पोस्टर्स लगते हैं, हर साल हमारे इश्तेहार छपते हैं, सब कुछ होता है, शेड्यूल फिक्स है हमारा हर साल का। लेकिन इस साल इन्होंने हमारा पोस्टर लगा था एयरपोर्ट के पास, इन्होंने पोस्टर उखाड़ दिया। उसके लिए लोगों में रोष आया कि ये पोस्टर किसने फाड़ा, क्यों फाड़ा है। लोगों को था कि शायद किसी सिविल ने फाड़ा, लेकिन वो किस पुलिस ने फाड़ा था वो पोस्टर। फायरिंग होगी, हमारा एक लड़का मर गया, 3 जख्मी हो गए।
जम्मू और कश्मीर में इस घटना को लेकर तनाव बना हुआ है। सिखों की सर्वोच्च संस्था श्री अकाल तख्त के जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने सिखों को शांति बनाए रखने की अपील की है।
कुछ ऐसे लोग ने जो हिंदू सिख मुस्लिम आपस में लड़ाई झगड़ा करवा के माहौल को खराब करना चाहते ने।
जून 1984 में सिख मिलिटेंट्स को निकालने के लिए इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल परिसर पर अटैक किया था और इस अटैक का कोड नेम ऑपरेशन ब्लू स्टार रखा गया था। इस ऑपरेशन में कई लोग मारे गए थे जिसमें भिंडरांवाला भी शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान सिखों की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त की बिल्डिंग को भी भारी नुकसान पहुंचा था। इस यादगार को मनाने के लिए दुनिया भर में सिख हर साल कीर्तन समागम करते आ रहे हैं।
रविंद्र सिंह रॉबिन आप तक ये रिपोर्ट लेकर आए थे। और जम्मू में विरोध प्रदर्शनों के बाद कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, यही जानने के लिए हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने अब से कुछ देर पहले जम्मू फोन किया, पुलिस महानिरीक्षक दिनेश राणा से बात की और ताजा जानकारी ली।
स्थिति ठीक है, कई जगह कोई प्रोटेस्ट वगैरह हुआ। आज एक समुदाय के लोगों ने कुछ यूथ वगैरह इकट्ठे होके प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कुछ टायर वगैरह जलाए, कहीं कहीं इकट्ठे हुए, तो उसके बाद पीसफुल है, कोई ऐसा कोई वायलेंट इंसिडेंट नहीं हुआ। कुछ एरियाज में कर्फ्यू लगाया है, बाकी जगह पूरे शहर में 144 जो है वो नाविश की गई है। कुछ एरियाज में सेना का भी फ्लैग मार्च करवाया है। कुछ सेंसिटिव एरियाज हैं, खास करके जो सतवारी से लेकर हमारा आरसपुरा का जो बेल्ट है जिसमें ये इंसिडेंट हुआ था, उस एरिया में फ्लैग मार्च हुआ है। और कुछ और सेंसिटिव एरियाज हैं जिधर इनको हमने यूज किया है।
ये थे जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक दिनेश राणा। जम्मू में जनरल सिंह भिंडरांवाला के पोस्टर हटाने से शुरू हुए विवाद के पीछे क्या किसी तरह की राजनीति है, इसकी असल वजह क्या है, यही समझने के लिए मैंने बात की चंडीगढ़ में इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन के निदेशक डॉक्टर प्रमोद कुमार से।
ये जो मुद्दा है इसको एक तरह से जो सिख सेंटीमेंट्स उससे इसको जोड़ के प्रेजेंट किया जा रहा है और ये हो रहा है जम्मू में। और मुझे जो ये लगती है कि जितने भी ये प्रोटेस्ट इस तरह के इस स्टेज पे हैं उसमें राजनीति तो है, पर राजनीति उस मुद्दे से जुड़ी हुई नहीं है। वो खालिस्तान का मुद्दा हो या भिंडरांवाला एक आईकॉन हो और जो रिप्रेजेंट करता है उस थॉट को, जो सेपरेशन है या सेसेशन है, ये सेंटीमेंट उससे जुड़े हुए नहीं है। जम्मू के कॉन्टेक्स्ट में ये जो एक आइडेंटिटी असर्शन जो वहाँ पे उसकी एक बैकग्राउंड है जम्मू कश्मीर की राजनीति की, उसके संदर्भ में इसे समझना चाहिए, ना कि इसको पंजाब में जो हुआ था या उस समय जो खालिस्तान या सिख सेपरेटिज्म फंडामेंटलिज्म मूवमेंट थी उसके संदर्भ में समझना नहीं चाहिए। पंजाब में तो जो भी इस मुद्दे को रेज करेगा इस समय उसकी राजनीतिक भविष्य अनसर्टन होगा, क्योंकि पंजाब के लोगों ने एक लेसन लिया है कि इस तरह की राजनीति से ट्रेजेडीज ही प्रोड्यूस होती हैं जिसमें कई लोग मारे जाते हैं और नतीजा कुछ नहीं होता।
ये थे चंडीगढ़ में इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन के निदेशक डॉक्टर प्रमोद कुमार, जो जम्मू में हुई घटना के राजनीतिक मायने बता रहे थे।
बीबीसी इंडिया बोल।
कांटे से कांटा कैसे निकालेगी भारत सरकार? रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर का ये कहना कितना उचित है कि चरमपंथ से निपटने के लिए चरमपंथियों का इस्तेमाल होना चाहिए? क्या आदिवासियों के सलवा जुड़ूम के जरिए माओवाद को खत्म किया जा सकता है? क्या जनतंत्र में ऐसे तरीके कारगर हो पाएंगे? इस बार इंडिया बोल में इसी विषय पर चर्चा होगी। रेडियो कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन कीजिए 1811 7000 और 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
अब वक्त हो चला है विवेचना का। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई देश अपने ही देश के लोगों के खिलाफ अपनी सेना और टैंकों का इस्तेमाल करे। 4 जून 1989 को बीजिंग में कुछ ऐसा ही हुआ और इस कार्रवाई में कथित रूप से सैकड़ों चीनी नागरिक मारे गए। क्या था पूरा मामला, रेहान फजल विवेचना में लेकर आए हैं।
जून 1989, चीन की राजधानी बीजिंग के मशहूर तियानानमेन स्क्वायर में कई हफ्तों से दसियों हजार लोग दिन रात प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग थी जमहूरियत और साथ साथ सामाजिक न्याय भी। प्रदर्शन में सबसे आगे थे बीजिंग विश्वविद्यालय के छात्र, उनमें से एक थी डियान वे लियांग।
I was a student at Beijing University, which was what we call the cradle of China.
मैं बीजिंग विश्वविद्यालय की छात्र थी, जिसे चीन के जनतांत्रिक आंदोलन का उद्गम स्थल कहा जा सकता है।
छात्र न तो सरकार गिराने की मांग कर रहे थे और न ही कम्युनिस्ट पार्टी को समाप्त करने की। इस आंदोलन के पीछे कई कारण थे। सीवी रंगनाथन उस समय चीन में भारत के राजदूत थे।
लेबर भी ज्वाइन हुआ और उनका प्रोटेस्ट 3-4 वजह से हुआ। एक उधर 89 का पहले, एक साल के पहले काफी इन्फ्लेशन हो रहा था। दूसरा, स्टूडेंट्स का ये कंप्लेंट था कि जब वो पास हो गए जॉब्स वो खुद नहीं पार्टी और स्टेट एलोकेट कर रहा था। तीसरा, करप्शन, पार्टी करप्शन का। तो ये 3-4 मामले के वो तो काफी आंदोलन ज्यादा हो गया, मगर ये क्रैकडाउन आने ही वाला था, क्योंकि वो जब उस टाइम में पार्टी सेक्रेटरी था एक जाओजी यांग करकर, उनको निकला गया क्योंकि उन्होंने डेमोन्स्ट्रेटर से नेगोशिएट करना चाहता था और नेगोशिएट कर लिए वो, उन्होंने तियानमेन स्क्वायर भी गया था। ये सब उन्होंने समझा कि पार्टी का बिल्कुल खिलाफ है। वो उस टाइम सबसे बड़ा आदमी था डंग शाओपिंग, जिन्होंने रिफॉर्म्स भी स्टार्ट किया, मगर डंग शाओपिंग का एक प्रिंसिपल था कि पार्टी सुप्रीमेसी, पार्टी का बिल्कुल शासन, उसको डिफाई नहीं कर सकता है। तो उन्होंने समझा कि भाई डेमोन्स्ट्रेटर्स नहीं निकल रहे हैं और जब तक तो फॉरेन में भी बहुत, पर्टिकुलरली अमेरिका में बहुत इसमें इंटरेस्ट हो गया और काफी फॉरेन करेस्पॉन्डेंट्स भी थे, तो उन्होंने समझा कि ये डेमोन्स्ट्रेशन अभी बंद करना चाहिए, तो उन्होंने क्रैकडाउन किया।
बीबीसी ने उस प्रदर्शन में भाग ले चुकी डियान वे लियांग से पूछा कि क्या इस आंदोलन में कूदने से पहले आपने अपने माता पिता से सलाह ली थी।
When you're 20 years old, you don't discuss with your parents. And we all went because...
जब आप 20 साल के होते हैं तो आप इस तरह की बातें अपने माता पिता से नहीं करते। हमने इसे इसलिए शुरू किया क्योंकि चीन की सिर्फ 1% आबादी ही विश्वविद्यालय तक जा सकती थी। जब सुविधाएं दी जाती हैं तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। हमारी जिम्मेदारी थी देश को बेहतर बनाना और उसके लिए त्याग करना।
हाउ जांग जंग की उम्र उस समय 18 साल थी। हमने उनसे पूछा कि सरकार द्वारा आंदोलन में शामिल न होने की चेतावनी दिए जाने के बावजूद आपने स्कूल छोड़कर तियानानमेन स्क्वायर जाने का फैसला क्यों किया?
Once the teachers and start to block, you know, classrooms and saying nobody can go out and...
जब अध्यापकों ने क्लासरूम बंद करके कहा कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं और मेरे 5 दोस्त उठे। मुझे नहीं पता कि हम में हिम्मत कहां से आई। हमने एक स्वर में कहा, हम बाहर जा रहे हैं।
जब जंग और उनके दोस्त तियानानमेन स्क्वायर पहुंचे तो वहां हजारों लोग गाना गाते हुए लाल झंडे हिला रहे थे। इसके अलावा वहां बहुत से लोग भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए थे।
There were camps for the hunger strikers, and there were security. There were many layers of security.
भूख हड़ताल से पहले हमने कई शिविर लगाए थे। वहाँ पर कई स्तरों की सुरक्षा व्यवस्था थी। मैं भी उसमें काम कर रही थी। वहाँ पर और भी काम थे, जैसे बीमार लोगों को अस्पताल ले जाना।
आपने अपने आप को मुश्किल में डाल दिया था। आपको डर नहीं लगा?
Yes, well, the night before June 4th, when the tanks moved in. Yes, I have to say I was very, very scared to
बिल्कुल,
do the night shift.
4 जून से एक रात पहले जब टैंक आए, मैं कहूंगी कि रात की शिफ्ट करते हुए मुझे बहुत डर लग रहा था।
Yeah, 2 o'clock in the morning when it was all dark and we held hands, we sung.
2 बजे तड़के बिल्कुल अंधेरा था। हमने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे थे और हम सब गाना गा रहे थे बिना रुके हुए। इनमें से कुछ माओ युग के गीत थे और कुछ हांगकांग के पॉप गाने भी। हम ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें खामोशी बिल्कुल पसंद नहीं थी।
जून की शुरुआत में ही छात्रों को लग गया था कि अब टकराव को नहीं रोका जा सकता।
By that time, we've already seen a number of platoons surfacing within Beijing.
उस समय तक हम देख पा रहे थे कि बीजिंग में बहुत सी प्लाटूनें प्रवेश कर रही थी। पहले जब वो आते थे तो छात्र उन्हें रोकते थे और वो वापस चले जाते थे। इस बार उनके साथ पहली बार टैंक आ रहे थे और हमें लग रहा था कि इस बार मामला गंभीर है।
डियान ने सुबह 4 बजे अपनी शिफ्ट समाप्त हो जाने के बाद तियानानमेन स्क्वायर छोड़ दिया। सेना का क्रैकडाउन शाम 7 बजे शुरू हुआ।
7 o'clock, that's when the central television started to broadcast this ominous message repeatedly for quite a few hours. Oh citizens,
7 बजे के आसपास टीवी पर लगातार संदेश आने लगे, सभी नागरिक अपने अपने घरों को चले जाएं। सेना सिटी सेंटर को खाली कराने के लिए आ रही है। अगर आप इस आदेश का पालन नहीं करेंगे तो परिणामों के लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। टेलीविजन और रेडियो पर इस उद्घोषणा के बाद इलाके की बिजली काट दी गई। मैं नहीं समझता कि हम इससे डर गए। ये जरूर था कि हमें पता नहीं था कि हम क्या करने जा रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी थी, लेकिन लोगों में अभी भी जोश था। लेकिन तभी चीजें तेजी से होने लगी।
बीजिंग के बीचों बीच चारों तरफ से गोलियां चलने की आवाजें आने लगी। सेना की बख्तरबंद गाड़ियों ने स्क्वायर में लगे हजारों टेंटों को कुचल दिया। लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे और सैनिकों की लारियों से उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जाने लगी। कई लॉरियों ने न सिर्फ छात्रों द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को कुचला, बल्कि कई छात्र भी उनकी चपेट में आ गए।
The troops have been firing indiscriminately, but still there are thousands of people on the streets who will not move back.
इस घटना से 2 दिन पहले भारतीय लेखकों का एक दल चीन पहुंचा था और इत्तेफाक से उन्हें एक ऐसे होटल में ठहराया गया था जो तियानानमेन स्क्वायर से बिल्कुल सटा हुआ था। भारतीय लेखकों के उस दल में मशहूर लेखिका और प्रसार भारती की पूर्व अध्यक्ष मणाल पांडे भी थी।
हमारा होटल जो था वो कुछ ही मीटर की दूरी पर था स्क्वायर की, लेकिन ऐसी जगह बना था कि स्क्वायर डायरेक्टली नहीं दिखता था। लेकिन जब ये मार पड़ी तो एक बड़ा हजूम, करीब 2-3 हज़ार लोगों का होगा, वो हमारे होटल में लपका चला आया और वो 2-3 लोगों को चोटें भी लगी थी, एक दूसरे को सहारा दिए तो बदहवासी की हालत में थे। उसके बाद वो आ करके परिसर में बैठ गया और पीछे गेट बंद कर दिया गया कि ये लोग दोबारा ना जा सकें। और बेहद सकपकाए हुए, बेहद डरे हुए लोग थे। हम लोग जब पहुँचे, बस उसी वक्त अचानक एक मोहतरमा टेलीविज़न पर आई और उसमें 2-3 भाषाओं में अनाउंस हुआ कि टेलीविज़न अब बंद किया जा रहा है और अगली सूचना का इंतज़ार। उसके बाद एकदम पटकताल न टेलीविज़न। अच्छा, उस ज़माने में ये मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे, इंटरनेट भी नहीं था, तो कहीं से किसी तरह की खबर पाने का उस तरह का आसरा भी नहीं था। और बीजिंग में तब इतनी गाड़ियां भी नहीं थी, सड़कें वीरान पड़ी हुई थी, भाएं भाएं करती हुई, हर जगह सिपाही, हर जगह वही हेलमेट्स दिखाई देती थी। बल्कि मुझे याद है हम लोगों का 8वीं या 9वीं मंजिल पर कमरा था, तो मैं देखती थी सुबह सुबह मेरे ही जैसे कुछ कुत्ता प्रेमी लोग अपने कुत्तों को टहलाने के लिए लाते थे, झक मार के उनको आना ही पड़ता था, लेकिन वो जल्दी से जल्दी कुत्ते को लेकर के फिर लपक लेते थे।
छिटपुट गोलीबारी कई दिनों तक चलती रही। यहां तक कि इस घटना के कुछ दिनों बाद जब भारतीय राजदूत सीवी रंगनाथन दिल्ली में संयुक्त सचिव सतीश नाम्ब्यार से टेलीफोन पर बात कर रहे थे तो पीछे से गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी।
जब मैं नाम्ब्यार से बात कर रहा था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, उसी टाइम हमारा दूतावास का सामने एक ये पीएलए कंटिजेंट और शूटिंग भी आवाज था, मगर उनके तीन चार दिन बाद में भी ऐसे रैंडम फायरिंग हो रहा था वो आर्मी से, तो वो तो काफी खतरनाक सिचुएशन था फॉरेनर्स के लिए। तो काफी एम्बेसी ने और हम भी उसमें जुड़े थे, हमने सब तय किया कि जो उतने जरूरत नहीं है एम्बेसी चलाने के लिए, वाइफ चिल्ड्रन उनको सब वापस भेजा गया।
भारतीय लेखकों के दल को उस होटल में 15 दिनों तक रहना पड़ा। इस बीच मृणाल पांडे ने होटल के पिछले दरवाजे से निकलकर कई चीनी लोगों से बात की।
जब हम लोग पीछे के दरवाजे से चोर दरवाजे से निकले ढकते छिपते, तो हम लोगों ने देखा कि रास्ते में पेड़ों पर बाकायदा नेल्स से लिस्टें ठोकी गई थीं, जिसमें कि तमाम भ्रष्ट जितने भी लीडरान थे पार्टी के, उनके नाम और उनके बैंक अकाउंट जो हांगकांग में थे उनके खातों के नंबर सहित टंगे हुए थे। लेकिन तब तक ये साफ हो चुका था कि बहुत सख्ती से इनसे बरता जाएगा। तो स्टूडेंट से और उनके पेरेंट्स से जो बातचीत हुई, तो उसमें उनसे हमको लगा कि पहला सबसे अधिक गुस्सा तो ये था करप्शन को लेकर। उनको लगता था कि इन्होंने एक इकोनॉमिक नया प्रोग्राम डेंग ने जो शुरू कर दिया था कि बिल्ली काली हो सफ़ेद हो चूहे पकड़े तो हमारे लिए वही काफ़ी है, खुद शुरू किया। और इन लोगों को ये था कि इनके बेटों ने और इन लोगों ने बहुत जम के पैसा बनाया है, बाहर के बैंकों में किया है, और यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनका लगातार अवमूल्यन हुआ है और उन लोगों को कोई भी छूट नहीं दी जाती है। लिहाजा वो अगर अपने बच्चों को पढ़ा के इंटेलेक्चुअल बनने को प्रेरित करते हैं तो ये तय है कि उनकी आमदनी ज़ीरो रहेगी और बहुत ही लो सोशल स्टेटस रहेगा। जबकि जो नाई हैं या टैक्सी ड्राइवर हैं, टूरिस्ट्स आने लगे थे तब तक चीन में बड़े पैमाने पर, अचानक ये जो बिल्कुल छोटे स्तर के लगभग अर्ध साक्षर लोग थे इनकी तो कमाई 10 गुना 20 गुना बढ़ने लगी थी, और इंटेलेक्चुअल्स को लगातार गोभी की खेती के लिए भेजा जा रहा था दंड के रूप में। इसको लेके इन लोगों में, प्रोफेसर्स में और उनके बच्चों में काफ़ी गुस्सा था। और ये भी एक गौरतलब चीज़ है कि वो वन फैमिली नॉर्म तब तक पूरी तामीर के बाद रंग दिखाने लगा था, तो ये जिन बच्चों को चोट लगी थी वो छात्र अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे, तो आप सोच सकते हैं कि माँ बाप में कितना गुस्सा था। दो तीन लड़कों ने हमसे कहा कि हम देखते हैं कि बगल के बार्बर के लड़का हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़कियों को डेट पर ले जाता है, और हमारे बाप इतने बड़े प्रोफेसर हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, और हमको कोई लड़की घास नहीं डालती। तो एक ये भी रीज़न था, यूथ की जो एनर्जी थी, यूथ की जो एस्पिरेशंस थी, उनको लग रहा था कि वो नहीं भरपाई हो रही है।
आज तक लोगों को पता नहीं है कि तियानानमेन स्क्वायर में उस दिन कितने लोग मारे गए थे। अनुमान अलग अलग हैं, कई सौ से लेकर कई हजार के बीच। उसके बाद से चीन में जन आंदोलन ने कभी सिर नहीं उठाया। बहुत से छात्र नेताओं को देश छोड़ना पड़ा। डियान वे लियांग आज एक उपन्यासकार हैं और हाउ जांग जंग एक पत्रकार हैं। दोनों इस समय लंदन में रह रहे हैं। रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
विवेचना और तमाम दूसरे कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैं, हमें अपनी राय से अवगत ज़रूर कराएं। और खेल की खबर का मैं जिक्र करता चलता हूं। इंडोनेशिया ओपन में एक तरफ जहां भारत के पी कश्यप पुरुष एकल वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, वहीं साइना नेहवाल चीन की शिजियांग वांग से 16-21, 21-12 और 21-18 से हारकर क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे अगले कार्यक्रम में। फिलहाल वक्त हो चला है एक बार फिर प्रमुख समाचारों का। प्रगति सक्सेना स्टूडियो में आ चुकी हैं।
बीबीसी समाचार। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने नेस्ले को देश भर में मैगी के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। पाकिस्तान की पुलिस ने यह माना है कि बच्चों के अधिकारों की कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई की हत्या करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार 10 लोगों में से 8 को छोड़ दिया गया था। अमरीकी अधिकारियों का कहना है कि हैकरों ने 40 लाख सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी चुरा ली है। अमरीकी अधिकारियों को शक है कि यह हैकिंग चीन से की गई। रोमानिया के अभियोक्ताओं ने प्रधानमंत्री विक्टर पोंटा के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री पोंटा पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। यंगसी नदी में डूबे चीनी जहाज में मृतक एक महिला की बहन ने सरकार के एक संवाददाता सम्मेलन में दाखिल होकर इस हादसे की जांच की मांग की है। बीबीसी समाचार।
ठीक डेढ़ घंटे बाद रात 9:30 बजे घटना चक्र में आपसे फिर मुलाकात होगी। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। तब तक दीजिए पूरी टीम को अनुमति, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर, जो 24 घंटे आपके साथ है।